नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा योजना से आगे का कदम है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना में हुआ भव्य स्वागत। श्री नवीन ने कहा, अगले 5 वर्षों में बिहार विकास के नए आयाम तय करेगा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाओं के विरोध में प्रदेश के विभिन्न भागों में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन जारी। और कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में जनजीवन हुआ प्रभावित। पटना समेत 14 जिले शीतलहर की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा योजना से आगे का कदम है। एक वीडियो संदेश में श्री चौहान ने कहा कि रोजगार सृजन और व्यापक ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त निधि सुनिश्चित करने हेतु वीबी जी राम जी योजना के तहत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है।
श्री चौहान ने कहा कि जी राम जी योजना विकसित, आत्मनिर्भर, गरीबी मुक्त और रोजगार उन्मुखी गांवों के निर्माण के लिए जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना कार्यों, आजीविका आधारित गतिविधियों और आपदा निवारण उपायों पर केंद्रित है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 1,56,00,000 जीविका दीदियों के खाते में 10,000 रुपए की राशि भेजी गई है। पटना में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
बिहार में 11 लाख से ज्यादा जीविका का समूह है, 1,40,00,000 से ज्यादा परिवार को जोड़े हैं, 1,56,00,000 जीविका की दीदियों को अभी तक खाते में पैसा गया है। 31 तारीख के बाद ये भी समीक्षा होगी कि हम लोग जितने लोगों को पैसा 10,000 रुपया दिया वो रोजगार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो रोजगार शुरू कर दिया है उसकी समीक्षा करके उनको और कितनी धनराशि की आवश्यकता है, 2,00,000 के अंदर उनको धनराशि और उपलब्ध कराया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पटना में भव्य स्वागत किया गया। श्री नवीन ने पटना हवाई अड्डे से वीरचंद पटेल पथ तक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के समीप स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही इनकम टैक्स चौराहा स्थित लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री नवीन ने नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार विकास के नए आयाम तय करेगा।
अब बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन का उम्मीद हुआ है। बिहार को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। इस मैंडेट से हमारी जवाबदेही बढ़ चुकी है। हम 202 के मैंडेट पे खड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमें जनता ने भी हम उस उम्मीद के साथ हमें जोड़ा। सरकार की योजनाओं के साथ साथ जनता के साथ जुड़ के काम करना है। जनता ने जिस अपेक्षा से हमें वोट दिया है उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का समय है। 2025 से 2030 का बिहार निश्चित रूप से विकास के वो मायने लिखने वाला है जिसमें बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे, बड़े निवेश के अवसर होंगे। इसलिए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आप सब कार्यकर्ताओं को भी अभी भी मेहनत और परिश्रम करना होगा।
श्री नवीन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे आम लोगों की समस्याओं के प्रति कोई संवेदना नहीं रखते हैं।
बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप, जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है। हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 24x7 काम करते हैं। तो आइए भाजपा के कार्यकर्ता पद्धति से आगे बढ़िए। ये जो पार्ट टाइम
मिलन हाई स्कूल में आयोजित अभिनंदन समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, कई केंद्रीय मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद और विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री नवीन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के विरुद्ध हो रही हिंसा के खिलाफ देश भर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किए जा रहे हैं। रोहतास जिले के सासाराम में दक्षिण पंथी संगठनों से जुड़े लोगों ने आज प्रदर्शन जुलूस निकाला और पोस्ट ऑफिस चौक पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। अररिया के फारबिसगंज, नालंदा के बिहार शरीफ, जहानाबाद, किशनगंज और अन्य स्थानों पर भी विभिन्न संगठनों की ओर से विरोध मार्च निकाला गया। इधर राजनीतिक दलों से जुड़े वरिष्ठ नेताओं ने भी बांग्लादेश की घटना पर चिंता जताई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हिंदू समुदाय के खिलाफ लक्षित हिंसा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर किसी को भी प्रताड़ित करना बेहद दुखद है।
दुनिया में कहीं भी किसी धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, इस्लाम धर्म के लोग हो। यहाँ हिंदुस्तान के संविधान में तो कानूनी स्वतंत्रता दी गई है सब लोगों को, जिस धर्म को मानना हो लोग माने, उसमें कोई हस्तक्षेप राज्य का, सरकार का नहीं है, क्योंकि धर्म भी मानवता की रक्षा के लिए है। और कोई भी व्यक्ति पहले व्यक्ति है, मानव है, फिर धर्म को मान रहा है, तो जिस धर्म को कोई मान रहा है उसकी इच्छा है। धर्म के नाम पर किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ खबर आ रही है बहुत ही उचित नहीं है, इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए।
निगरानी विभाग की टीम ने पटना जिले के मसौढ़ी प्रखंड अंतर्गत नदौल से राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को 1,00,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं निगरानी की टीम ने सीवान जिले में भी कार्रवाई की है। टीम ने जिले के सिसवन थाने में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया सिंह को 40,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस आज पूरे देश में समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। ग्रामीण मुद्दों की गहरी समझ और किसानों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किसानों के योगदान के मद्देनजर सरकार की योजनाओं पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
भारत का कृषि क्षेत्र, जिसमें देश की लगभग आधी आबादी जुड़ी हुई है, देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत आधार बना हुआ है। किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान और सतत कृषि विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इन पहलों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शामिल है, जिनका उद्देश्य किसानों को वित्तीय सुरक्षा, जोखिम से संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। देश में इस वर्ष कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 357 मिलियन टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.65% अधिक है। वहीं वर्ष 2014-15 के मुकाबले देश के खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 42% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि किसानों को सशक्त बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। पटना स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर में 2 दिवसीय किसान मेला सह राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए श्री यादव ने कहा कि किसानों की आय बढ़ेगी तभी 2047 तक देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होगा।
पूर्वी भारत, विशेष करके बिहार, कृषि के दृष्टिकोण से अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। यहाँ की उपज, मेहनत कश किसान, भूमि और कृषि समृद्धि, समृद्ध कृषि परंपरा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पिछले 25 वर्षों में पूर्वी भारत की कृषि उन्नति के लिए अनुसंधान और कृषि कार्य वास्तव में प्रशंसनीय और करणीय है। इस संस्था के लघु एवं सीमांत किसानों को केंद्र में रखकर अनेक व्यवहारिक और किसान उपयोगी तकनीकों का विकास किया है।
इधर प्रदेश के अन्य स्थानों में भी किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैशाली जिले के हरिहरपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को सम्मानित किया गया। शिवहर के कृषि विज्ञान केंद्र में किसान अधिकार सम्मान और सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रखंडों के 200 किसानों को कृषि संबंधित नवीन जानकारियां दी गईं। शेखपुरा के विधायक रणधीर कुमार सोनी ने जिला कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले के किसानों को सम्मानित किया। वहीं सुपौल के जिला कृषि कार्यालय परिसर में किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए किसानों को प्राकृतिक खेती करने की सलाह दी है। श्री मोदी ने लगभग 3 मिनट के इस वीडियो में दाल की खेती करने वाले किसान कृष्ण कुमार के साथ बातचीत में दलहन की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने पीएम फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि और धन धान्य योजना का भी जिक्र किया है। प्रदेश के अधिकतर भागों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं घने कोहरे के कारण भी जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर काफी कम हो जाने से कनकनी का एहसास बढ़ गया है। पटना, अरवल, औरंगाबाद समेत 14 जिलों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, वहीं राज्य के विभिन्न भागों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
दिनांक 23 दिसंबर 2025 एवं 24 दिसंबर 2025 राज्य के उत्तरी, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति होने की संभावना है एवं राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के 1 या 2 स्थानों में घना कोहरा जैसी स्थिति होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के शेष भाग के कुछ स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए होने की संभावना है।
पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कम होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। आज भी पटना, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे से कई नियमित उड़ानें रद्द कर दी गईं। वहीं कई विमानों का परिचालन परिवर्तित समय से किया गया। इधर कोहरे के कारण लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां काफी विलंब से चल रही हैं। अत्यधिक ठंड और शीतलहर से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक सभी स्कूलों को 26 दिसंबर तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। वहीं लखीसराय में 4 जनवरी 2026 तक कक्षा 8वीं तक शैक्षणिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस दौरान कक्षा 9 और ऊपर की कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियां पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रखी जा सकती हैं। इधर शेखपुरा जिला प्रशासन ने 25 दिसंबर तक कक्षा 8 तक के स्कूलों में पठन पाठन पर रोक लगा दी है। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र में अगलगी की घटना में 12 दुकानें जलकर नष्ट हो गईं। जानकारी के अनुसार इस घटना में लगभग 15 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सारण जिले के नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कादीपुर गांव के पास तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अररिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने जाति सूचक गाली गलौच और मारपीट के मामले में 13 आरोपियों को 6-6 महीने की कारावास की सजा सुनाई है। बक्सर जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला इटाढ़ी थाना क्षेत्र का है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा योजना से आगे का कदम है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का पटना में हुआ भव्य स्वागत। श्री नवीन ने कहा, अगले 5 वर्षों में बिहार विकास के नए आयाम तय करेगा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाओं के विरोध में प्रदेश के विभिन्न भागों में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन जारी। और कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में जनजीवन हुआ प्रभावित। पटना समेत 14 जिले शीतलहर की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।